नेपाल है। अब रमिता यादव से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। नेपाल हमेशा शांति, मानवाधिकार और न्याय के पक्ष में रहेगा, प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का कथन। 24 घंटे के भीतर एयरलाइंस का टिकट रेट उपलब्ध कराने का वायुसेवा कंपनियों को, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री बद्री पांडे ने किया निर्देश। चालू आर्थिक वर्ष के 4 महीने में 12 अरब 71 करोड़ रुपए का बिजली किया गया भारत निर्यात, और पाकिस्तान सेना की चौकी पर आत्मघाती हमला, 17 सैनिकों की मौत। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने कहा कि नेपाल हमेशा विश्व शांति, मानवाधिकार और न्याय के पक्ष में है। फिलिस्तीनी के ऊपर इसराइल द्वारा किए गए हमले के खिलाफ प्रस्तुत होने की मांग करते हुए विभिन्न राजनीतिक दल और नागरिक संस्था का आज ध्यानाकर्षण पत्र लेते हुए प्रधानमंत्री ओली ने कहा कि ध्यानाकर्षण पत्र में उठाए गए विषयों के खिलाफ सरकार नहीं जाएगी। प्रधानमंत्री ओली ने कहा कि वो अकेले किसी ताकत के खिलाफ नहीं लड़ेंगे, सैन्य गठबंधन में नहीं रहेंगे, लेकिन अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे। सभामुख देवराज घिमिरे ने कहा कि शिक्षा संबंधी विधेयक संसद से जल्द ही पास होगा। आज इंद्रचंद्र कॉलेज विरता मोड में आयोजित कार्यक्रम में सभामुख देवराज घिमिरे ने कहा कि प्रतिस्पर्धी और क्षमतावान जनशक्ति निर्माण करने के लिए उसी हिसाब से मेहनत करने के लिए विद्यार्थियों और कॉलेज प्रशासनों को आगे बढ़ना चाहिए। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने कहा कि संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र का लक्ष्य लोगों में ये विश्वास जगाना है कि मेरा भविष्य केवल इसी व्यवस्था में सुरक्षित है। आज राष्ट्रपति भवन शीतल निवास में आयोजित महेंद्र नारायण निधि की संघर्षपूर्ण जीवनी पर आधारित नेपाल का निधि नामक पुस्तक का विमोचन करते हुए उन्होंने कहा कि संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र के लक्ष्य को पूरा करने के लिए सभी को न्यायपूर्ण, समावेशी और समृद्ध आधुनिक नेपाल बनाने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। राष्ट्रपति पौडेल ने कहा कि शासन प्रणाली पारदर्शी, जवाबदेही और सुशासन लोगों में विश्वास पैदा करने की पहली शर्त है। राष्ट्रपति पौडेल ने स्पष्ट किया कि महेंद्र नारायण निधि के बहुआयामिक व्यक्तित्व नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना और बहाली तथा सामाजिक और सांस्कृतिक जागृति उन लोगों के लिए भी संग्रहणीय सामग्री होगी जो जानना और समझना चाहते हैं। गृहमंत्री रमेश लेखक ने कहा कि कानून के खिलाफ हर गतिविधि दंडनीय है। आज महेंद्र नगर में नेपाली कांग्रेस कंचनपुर द्वारा आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गृहमंत्री ने कहा कि देश में शांति और सुरक्षा बनाए रखने की ओर सरकार का ध्यान केंद्रित है। गृहमंत्री ने कहा कि हालांकि आलोचना और विरोध सभ्य तरीके से भी किया जा सकता है, लेकिन अमर्यादित, अश्लील और अराजक गतिविधियां बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गृहमंत्री लेखक ने विश्वास जताया कि सुदूर पश्चिम प्रदेश में शुरू हुए प्रदेश स्तरीय सुरक्षा सम्मेलन से नई योजना बनाने में मदद मिलेगी। उन्होंने यह भी बताया कि सुदूर पश्चिम प्रदेश स्तरीय सुरक्षा सम्मेलन आज कैलाली के धनगढ़ी में संपन्न हुआ। ये कहते हुए कि लोकतंत्र को एक अनुशासन के रूप में विकसित करना आवश्यक है, मंत्री ने दोहराया कि लोकतंत्र ही लोकतंत्र का एकमात्र विकल्प है। सरकार ने देश भर में 14 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए मुफ्त कैंसर इलाज शुरू किया है। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्री प्रदीप पौड़ेल ने आज एक कार्यक्रम के दौरान भक्तपुर कैंसर अस्पताल में निशुल्क बाल कैंसर उपचार सेवा का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में मंत्री पौड़ेल ने कहा कि इस कार्य के तहत 14 वर्ष से कम उम्र के 16 लाख बच्चों के लिए मुफ्त कैंसर उपचार सेवाएं शुरू की गई हैं। पूरे देश में स्वास्थ्य सेवाओं को प्रभावी बनाया जाएगा। मंत्री पौड़ेल ने कहा कि ये सेवा विश्व स्वास्थ्य संगठन के सहयोग और अन्य निकायों के समन्वय में नेपाल सरकार ने संसाधनों की कमी के बावजूद भी शुरू किया है। मंत्री पौडेल ने कहा कि सरकार ने कांति बाल अस्पताल काठमांडू, भक्तपुर कैंसर अस्पताल भक्तपुर और बीपी कोरला मेमोरियल कैंसर अस्पताल भरतपुर चितवन में बच्चों को कैंसर उपचार सेवा निशुल्क कराने का निर्णय किया है। आप रेडियो नेपाल से हिंदी समाचार सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
ए छोरा, के छ हाल खबर? पढाइ कस्तो चल्दैछ?
सबै राम्रै चल्दैछ। अनि त्यहाँ के छ बुवा?
यहाँ पनि सबै राम्रो छ। ला, तेरो आमासँग कुरा गर।
पर्दैन पर्दैन, किन धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ?
किन टेन्सन लिन्छस् बाबु? हामी जस्ताको लागि एनटीसी को कल इन्डिया प्याक छँदैछ नि। इन्डिया कल गर्न त कस्तो सस्तो पो छ त त्यसमा।
ल त्यसो भए ढुक्कले कुरा गरौँ न त।
सेवा सुचारु गर्नका लागि *1415# डायल गर्नुहोस्।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री बद्री पांडे ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ान संचालित करने वाली एयरलाइंस को 24 घंटे के अंदर एयरलाइंस का टिकट रेट उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। उन्होंने एयरलाइंस कंपनियों को किराए में बढ़ोतरी पर दोबारा विचार करने का निर्देश दिया। इससे पहले पर्यटन मंत्री ने इस बात पर आक्रोश जताया था कि नियामक संस्था के साथ चर्चा में किराया नियंत्रित करने के लिए 5 बिंदुओं पर सहमति बनी थी, लेकिन हवाई सेवा कंपनी ने उन पर अमल नहीं किया। मंत्री पांडे ने चेतावनी दी है कि राष्ट्रीय ध्वजवाहक नेपाल एयरलाइंस कॉरपोरेशन, नेपाल एयरलाइंस और हिमालय एयरलाइंस ने भी हवाई किराया बहुत तेजी से वसूला है। उन्होंने 24 घंटे के अंदर बेचे गए टिकटों की कीमत उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। परराष्ट्र मंत्री डॉ राजू राणा देवबा ने खेल कूटनीति के विकास और विस्तार के लिए आवश्यक सहयोग पहुंचाने का खेल और साहसी खेल क्षेत्र से संबंधित मंत्रालयों, विभागों और पदाधिकारियों से आग्रह किया। आज परराष्ट्र मंत्रालय में साहसिक खेलों पर आयोजित उच्च स्तरीय परामर्श बैठक में उन्होंने संबंधित अधिकारियों और निकायों से आग्रह किया। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दहाल प्रचंड ने कहा कि माओवादी नेतृत्व की सरकार ने देश में ऐतिहासिक काम किया है। आज नेकपा माओवादी केन्द्र गोरखा द्वारा जिला मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि संविधान क्रियान्वयन के साथ ही देश में सुशासन, उज्ज्वल नेपाल निर्माण लगायत महत्वपूर्ण काम माओवादी के नेतृत्व में संभव हुआ है। चालू आर्थिक वर्ष के प्रथम चौमासिक में नेपाल ने 12,71,94,59,000 की बिजली भारत निर्यात की है। प्राधिकरण भारत के हरियाणा और बिहार राज्य में औसत दर प्रति यूनिट 7.63 रूपये में बिजली बिक्री किया करता है। मेडिकल व्यवसायी दुर्गा परसाई को 5 दिनों तक हिरासत में रखने की अदालत ने अनुमति दे दी है। आज जिला अदालत काठमांडू ने परसाई को 5 दिनों तक हिरासत में रखने की अनुमति दी। ये जानकारी साइबर ब्यूरो के प्रवक्ता एवं एसपी दीपक राज अवस्थी ने दी। साइबर अपराध के आरोप में गिरफ्तार परसाई को मियाद अतिरिक्त करने के लिए जिला अदालत काठमांडू लाया गया था। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। पाकिस्तान में आज एक बड़ा आत्मघाती हमला हुआ है। आतंकवादियों ने आज दोपहर 2 बजे उत्तर पश्चिम में एक चौकी को निशाना बनाया। आतंकवादियों द्वारा किए गए इस आत्मघाती हमले में 17 सैनिकों की मौत हो गई है। पाकिस्तानी सेना की मीडिया शाखा ने इस घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि आतंकवादियों ने उत्तरी खैबर पख्तूनख्वावा प्रांत में चौकी में विस्फोटकों से लदे वाहन को अंदर घुसा दिया। इसके बाद एक बड़ा धमाका हुआ। इस हमले में 17 सैनिकों की मौत हो गई है और कुछ अन्य घायल हुए हैं। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 21 से 23 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 9 से 11 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 21.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 9.2 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। नेपाल हमेशा शांति, मानवाधिकार और न्याय के पक्ष में रहेगा। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का कथन। 24 घंटे के भीतर एयरलाइंस का टिकट रेट उपलब्ध कराने का वायु सेवा कंपनियों को संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री बद्री पांडे ने किया निर्देश। चालू आर्थिक वर्ष के 4 महीने में 12,71,00,000 रूपये का बिजली किया गया भारत निर्यात और पाकिस्तान सेना की चौकी पर आत्मघाती हमला, 17 सैनिकों की मौत। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिन्दी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।